ஓம் ஓம் ஓம். அதிகுரு சர்வஜ்ஞ பகவான் சங்கராச்சாரியஜி துவாரா விரச்சித் வாக்கிய விருத்தி இஸ் பிரகடனாத்மக் லகு கிரந்த பர் மாதுஸ்ரீ விலாபென் ததா மூல்ஜிபாய் தையா பரிவார் ஆர் பிரேம்புரி ஆசிரம் ட்ரஸ்ட் சயுக்த ஆயோஜனா மே கீதா சிந்தன் மாலா கே அந்தர்கத் யஹ விசேஷ பிரவச்சன் கல் சே ஆரம்ப ஹுவா ஹை 11 திவசிய ஆஜ் தூசரா தின் ஹை. இஸ் பிரவச்சன் மாலா மே விசாரணீய விஷய ஹை வாக்கிய விருத்தி. ஆதிகுரு சங்கராச்சாரிய ஜி கிருதி ஹை, ரச்சனா ஹை. இஸ் கிரந்த கே மாத்யம் சே எக் முமுக்ஷு ஜிக்யாசு சிஷ்ய சர்வஜ்ஞ குரு கே சாம்னே சம்சார பந்த நிவத்தி கே பாரே மே ஜிக்யாசா கர்த்தா ஹை ஆர் உஸ்கே உபாய கே ரூப் மே சமக்ர கிரந்தோ கி உபயோகிதா ஹை. மகாவாக்கிய மே சார் மகாவாக்கிய மே சே दो महावाक्यों का प्रयोग किया है. तत्त्वमसि और अहम् ब्रह्मास्मि. ये दो महावाक्यों का प्रयोग करके ये उपदेश शुरू हुआ है. जैसे कि कल बता रहे थे ग्रंथारंभ, ग्रंथ मध्य और ग्रंथ अंत में मंगलाचरण करनी चाहिए. वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है. மங்களாச்சரண அந்தர்கத் பரமாத்மா கோ ஸ்மரண் கியா ஜாதா ஹை, நமன் கியா ஜாதா ஹை. காரிய நிர்விக்ன சித்தி கே லியே அத்ருஷ்ட ரூப் மே கர்த்தும் அகர்த்தும் அன்யதா கர்த்தும் சமர்த்த பரமாத்மா கா சஹயோக் ஜீவாத்மா கோ அபேட்சித் ஹை. பரமாத்மா ஹமேஷா பரோக்ஷ ரஹ்கர் ஹி ஜீவாத்மா கா மதத் கர்த்தா ரஹ்தா ஹை. யே ஹம் ஆப் ஜோ शास्त्र में परमात्मा में विश्वास करने वाले आस्थावान व्यक्तियों का ये अनुभव है, मान्यता है, विश्वास है कि परमात्मा मददगार है, हमें मदद करता है. परमात्मा के सामने हम क्षुद्र हैं. परमात्मा विराट है, विशाल है, तो हम लघु हैं, क्षुद्र हैं, तो हम कर क्या सकते हैं उसके कृपा के बिना, उसके मदद के बिना, उसके सहयोग के बिना. यही अध्यात्म है, इसी का नाम अध्यात्म है। इस पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति जरूर कार्य आरंभ में परमात्मा का स्मरण करता है, यही मंगलाचरण है और ये पाया गया है। आस्थावान व्यक्ति कार्य संपादन में कार्य सिद्ध होने पर समग्र श्रेय वो परमात्मा को देता है और अहम अपने अहम को नहीं लेता, यानी अहंकार की वृद्धि नहीं हो पाती है कि मैंने किया, ये नहीं कहता है। अन्यथा परमात्मा के सहयोग से संपन्न हुआ हुआ कार्य को भी जीवात्मा अहंकर्ता, अहंकार के चलते, अभिमान के चलते वो ये कहता है कि मैंने इसको पूरा किया, मेरे वजह से ये पूर्ण हुआ, मैं ना होता तो ये पूर्ण नहीं होता। तो ये अहंकार का प्रतीक है। परमात्मा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस प्रकार के अहंकार को धारण नहीं कर सकता, इसीलिए मंगलाचरण करता है और कार्य निर्विघ्न समापन होने पर उसका श्रेय भी परमात्मा को ही देता है कि ईश्वर कृपा से ये पूरा हुआ। जैसे कि कल हम बता रहे थे कि मंगलाचरण में शंकराचार्य जी ने नमन शब्द का प्रयोग किया, नमामि प्रविभाव, नमा इत्यस्य प्रविभावः। अपनी कर्ता भाव को विसर्जन है, और इसी के अभाव में ज्ञानी भी अहंकारी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अहंकार का विसर्जन कर नहीं पाता। अहंकार पूर्वक प्रयत्न करके वह ज्ञान प्राप्त करता है तो वो भी ज्ञानी अहंकारी होता है, और वो फिर दुखदायी बना रहता है। ऐसा यथावत संसार बंधन, जैसा का वैसे ही है। किसको तुम नमस्कार करते हो, तुम्हारा नमनीय कौन है? तो उसके लिए कहा विमल बोध घनम नमामि, मैं उसको नमस्कार करता हूं जो स्वरूपतः विमल बोध रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रकार के बोध हैं। थोड़ा हम वेदांत की शैली से ही विश्लेषण करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बोध दो प्रकार के हैं, एक समल बोध दूसरा विमल बोध। आप शब्दों के अर्थ से परिचित हो गए होंगे। समल का अर्थ होता है मल सहित, मल दोष से सहित जो बोध है उसको समल बोध कहेंगे। मल दोष से रहित जो बोध है उसको विमल बोध कहेंगे। मल क्या है? मल बोध में, मल क्या है जिस बोध को मलिन बनाता है? हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं ना, मलिन शब्द, इसका व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? मललीन, मलिन। मलिन का अर्थ हो गया जिसमें मल अर्थात दोष लीन होकर रह रहा है, यानी दोष का अस्तित्व है, उसी का नाम मलिन है ना। कपड़ा मलिन है, धोना चाहिए। कपड़ा मैला है, धोना चाहिए। मल उसमें चिपक गया, लीन हो गया, तो क्या हुआ? मलिन हो गया कि नहीं? और विगत मल विमल, मल अर्थात दोष, विगत विमल जिसमें मल, जिससे मल निकल गया वो तो विमल। तो बोध में मल क्या है? तो हम तो वेदांती हैं, इसलिए वेदांत की भाषा में बताएंगे, आपको समझ में आए चाहे ना आवे। और आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ, बोध में मल, जैसे कि आप लोग सुनते हो उपनिषद, सुना है मुंडक उपनिषद, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा च। अपरा जो विद्या है वही समल है। विद्या में जो अपरापना है वो क्या है? समल विद्या है। उपनिषद ने जिसको विद्या कहा है, यहां की भाषा में आप उसको बोध कहोगे। अपरा बोध, अपरा विद्या, अपरा बोध, वो समल। और वेदांत की भाषा में आपको कह दूं, समल अर्थात होता है मल सहित बोध। तमाम व्यवहार का ज्ञान, तमाम व्यावहारिक सत्ता का ज्ञान, व्यवहारियमाण पदार्थों का ज्ञान, बोध पर्यायवाची शब्द। और शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रजन्य बोध ज्ञान, बोध सब समल है। उस बोध में मल क्या है? तो बताया, फल व्याप्ति होना ही मल है। ये आप लोग नोट कर लो, प्रक्रिया की बात है ये। फल व्याप्ति होना ही, फल व्याप्ति बोध में, फल व्याप्ति होना ही उस बोध में मल है। ये आपको समझ में तो कठिन तो होगा ही है। फल व्याप्ति क्या है? तो आप लोगों ने कई बार प्रवचनों में, वेदांत प्रवचनों में और स्वाध्याय में फलव्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति की बात सुनी होगी। ये वेदांत ग्रंथों में पढ़ा भी होगा। दो प्रकार के ज्ञान हैं, दो प्रकार की वृत्ति है, दो प्रकार से बोध होता है। ये पुष्पमाला है, ये जो बोध हुआ, ये जो ज्ञान हुई आपको, ये बोध जो हुआ है, वेदांत के भाषा में यह फलव्याप्ति है। फल फलव्याप्ति का अर्थ हो गया कि सम्मल बोध, नाम रूपात्मक पदार्थ का ज्ञान ही समल ज्ञान है, यानी दोषयुक्त ज्ञान है, क्योंकि ये बोध सर्व अनर्थ का कारण मूला विद्या को नाश करने में समर्थ नहीं है। ये जो ज्ञान है घट ज्ञान, अयम घट किसी ने कह दिया ये मिट्टी का घड़ा है, तुम्हें वो ज्ञान हुआ कि ये मिट्टी का घड़ा है, तो ये ज्ञान ये बोध समल बोध अपरा विद्या, तो इसको नमस्कार करने की जरूरत नहीं है वही। हाँ, जिसमें दोष विद्यमान हो तो दोष क्या है, बोध में दोष क्या है, तो फलव्याप्ति। ये शुद्ध स्वाध्याय का विषय है, फिर भी आपको हम समझा रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हो तो सुनो। यहां मंगलाचरण शंकराचार्य जी कर रहे हैं और किसको नमस्कार कर रहे हैं, जो विमल बोध घन है। विमल बोध घन का अर्थ होता है फलव्याप्ति रहित बोध, अंतकरण की वृत्ति में आरूढ़ हुआ हुआ चिराभास का नाम ही फल है। अंतकरण, अंतकरण के वृत्ति, विषयाकार की वृत्ति, वृत्ति में आरूढ़ जो चिदाभास, वो चिदाभास विषय को प्रकाशित करती है, तो वो समल है, वो विमल नहीं हो सकता। आभास कभी भी विमल नहीं होगा, और पदार्थ को जो जानने वाला होगा वह आभास ही जानेगा, निराभास नहीं जानेगा। निराभास में द्वैत न होने के कारण, पदार्थ की सत्ता न होने के कारण निराभास में तो फलव्याप्ति होना संभव ही नहीं है। और क्योंकि द्वैत आभास के लिए है, द्वैत खड़ा किया ही आभास ने, चिदाभास ने, जीवात्मा ने खड़ा किया है द्वैत, और खुद अपने द्वारा खड़े किए हुए द्वैत को, पदार्थों को वह खुद अपने द्वारा जानता है, तो वो हो गया आभास बोध, फलव्याप्ति हो गया। लेकिन यहां जो परमात्मा के बारे में जो कहा है वह परमात्मा एक तो खुद साभास नहीं है, आभास नहीं, आभास चैतन्य नहीं है परमात्मा, और परमात्मा उसके सामने कोई द्वैत कल्पना नहीं है। शुद्ध अखंड चैतन्य के सामने कोई द्वैत पदार्थों की कल्पना नहीं है, तब फलव्याप्ति उसकी होगी ही नहीं। परमात्मा को जो बोध होगा वो फलव्याप्तित्वेन बोध नहीं होगा। जीवात्मा को जो बोध होगा वो फलव्याप्तित्वेन बोध होगा। आप जो कुछ भी जानते हो जगत में अपने अलावा, और अपने आप को भी तो आप कहां जान रहे हो, जैसा जानना चाहिए वैसा तो नहीं जान रहे आप अपने आप को भी। अपने आप को भी खुद अन्यथा जान रहे हैं। आप अपने को किस रूप में जानते हो, कि मैं मनुष्य हूं, इस रूप में जानते हो कि नहीं है? मैं औरत हूं, मैं महिला हूं, मैं मर्द हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कर्ता हूं, मैं वक्ता हूं, मैं उसके मां हूं, मैं उसका बाप हूं, उसका भाई हूं, उसका पति हूं, उसका पत्नी हूं, ये सब क्या है? ये ज्ञान कोई अपना ज्ञान है? बोलो, अपने बारे में इस प्रकार का जानना कोई ज्ञान है? ये तो अन्यथा जान रहे हो। और महाभारत में तो ऐसा लिखा है, अपने को इस प्रकार का जानना, इस प्रकार से जानना जिस प्रकार से मैंने अभी कहा, इससे बढ़कर दूसरा पाप है ही नहीं। अपने को अन्यथा रूप में जानना, इससे बढ़कर दूसरा पाप हो ही नहीं सकता है। ये बात भगवान सनत कुमार ने, सनत सुजात ने राजा धृतराष्ट्र को कही। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। खुद अपने आप अन्यथा होता हुआ भी अन्यथा मानता है। किमतेन न कृतम पापम, उसने तो गो हत्या से भी बड़ा पाप किया है। अब छोटे छोटे चींटी को मारने से डरते हो, कहते हैं हत्या होगी पाप लगेगा, यह अलग बात है कि वह भी एक पाप है। ये नहीं कह रहा हूं कि हम उसको पाप करो, नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सबसे बड़ा पाप तो कर ही रहे हो, तो उस ऐसे पाप तो उस आप जो पाप कर रहे हो उसके सामने वो पाप तो कुछ भी नहीं है। कौन कह रहा है? सनत सुजात कह रहे हैं राजा धृतराष्ट्र के सामने। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। तुम हो कुछ और मान रहे हो कुछ और, ये पाप नहीं है तो और क्या है? किमतेन न कृतम पापम, सोरेण आत्मा अपहारिणः। वो तो चोर है, सबसे बड़ा पापी है। दुनिया में और सबका प्रायश्चित हो सकता है, इस पाप का प्रायश्चित तो एक ही उपाय से हो सकता है, वह वेदांत डिंडिम में कल सुन चुके हो। ज्ञान हुए बिना इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। दस दिन तो भूखे बैठ जाओगे तो भी ये प्रायश्चित नहीं होने वाला है वो वेदांत की दृष्टि से। जैन दर्शन, जैन धर्म में जैनी लोग चातुर्मास समाप्ति में व्रत करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या सांद्र, क्या क्या बोलते हैं, हाँ, ये 7 दिन पर्युषण, हाँ, बड़ा जबरदस्त करते हैं वो लोग, है ना। लेकिन वो पर्यूषण करने मात्र से ये पाप तो नष्ट नहीं होगा, उन पाप है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्य, ये पाप तो प्रायश्चित तो इसका तो होगा ही नहीं। सबसे बड़ा पर्यूषण तो ये वेदांत है। वाक्य का अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना यह प्रायश्चित नहीं होगा। ये समल बोध और विमल बोध, तो यहां शंकराचार्य जी किसको नमस्कार कर रहे हैं? जो विमल बोध घन है, उपाधि रहित, वृत्ति रहित, फल रहित, शुद्ध चैतन्य मात्र को विमल बोध घन कहा, उसको मैं नमस्कार करता हूं। क्या विमल बोध नमस्करणीय है? कैसा है? कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, तो सिर कहां झुकाओगे, हाथ किधर जोड़ोगे? बड़ी समस्या है। हमेशा हाथ जोड़ते हैं तो आगे से ही हाथ जोड़ा जाएगा, आगे कुछ दिखेगा तब हाथ जोड़ा जाएगा। तब विमल बोध तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक है, तो उसको नमस्कार कैसे करेंगे? देखो, ये ऐसा है, इतना जानना ही उसके लिए नमस्कार है। एक क्रियात्मक नमस्कार नहीं, मस्तक झुकाना रूपी नमस्कार नहीं, हाथ जोड़ना रूपी नमस्कार नहीं, ये तो क्रियात्मक नमस्कार है, उपाधिकृत नमस्कार है। बुद्धि से निश्चय करना ही नमस्कार है। कहते हैं ना, महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव मक्का गए, मदीना गए, सभी मुसलमान गए तो उनकी इच्छा हुई तो हम भी चले जाएं। वो तो रेगिस्तान, चलते चलते थक गए बेचारे, तो अंदर जाकर इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, कहीं कोई मूर्ति, आकार प्रकार कुछ भी नहीं। अब किसको नमस्कार करें, किसको हाथ जोड़ें? वे लोग हमारी निंदा करते हैं ना, ये हिंदू लोग सनातनी तो बूथ परस्त हैं, बूथ पूजा करते, बूथ परस्त हैं, मूर्ति पूजक हैं। तो वो लोग तो मूर्ति नहीं मानते, बूथ नहीं मानते। नानक जी बाहर आके और सो गए, लेट गए, ऐसे थके हुए थे। संयोग से मस्जिद की तरफ उनका पांव था, सोते समय पांव किधर हो गया, तो मस्जिद की तरफ। तो कुछ मुसलमान लोग नमाज पढ़ पढ़ के आए तो देखा ये तो मस्जिद की तरफ पांव करके सोया है, कहां से ये नापाक आ गया? तो खूब डांटा नानक देव को, क्या मस्जिद की तरफ पांव करके सो रहा है, शर्म नहीं आती है? तो नानक देव ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं जिधर पांव करता हूं मस्जिद उधर ही होती है, अब तुम ही पांव घुमाकर उधर कर दो जिधर मस्जिद नहीं है। तो दो व्यक्ति ने दो टांग पकड़ ली और घुमा दिया, तो मस्जिद की तरफ सिर कर दिया और विपरीत पांव कर दिया। खड़े होकर देखते हैं तो मस्जिद उधर ही है, पांव की तरफ ही मस्जिद है। उन्होंने फिर दूसरे तरफ घुमाए, उधर ही मस्जिद है, जिधर घुमाते उधर ही मस्जिद है। अब हम तो सामान्य व्यवहार करते हैं ना, भगवान के मंदिर की तरफ पांव नहीं करो। अब भाई भगवान सर्वव्यापी हुए है तो फिर किधर पांव, आपका पांव जिधर है उधर ही भगवान है, अब कहां करोगे तुम पांव को, किधर रखोगे पांव को है? फिर भी निर्गुण निराकार, हम तो यही मानते हैं ना कि आकाश की तरफ सिर होता है, धरती की तरफ पांव होता है, हमारी मान्यता यही है कि नहीं? धरती की तरफ पांव और आकाश की तरफ सिर। आपका सिर किधर है? आकाश की तरफ है। अब विचार करो तो क्या आपके पांव की तरफ आकाश नहीं है? सर्वव्यापी आकाश को तुम कहोगे कि सिर की तरफ आकाश है और पांव की तरफ धरती है, सर्वव्यापी आकाश, तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब चारों तरफ आकाश है, आकाश है। मछली के किधर पानी नहीं है बोलो? सिर की तरफ पानी है कि पूंछ की तरफ पानी है? हैं? मछली के पानी किधर है, सिर की तरफ है कि पूंछ की तरफ है? इसी तरह परमात्मा किधर है, पांव की तरफ है कि सिर की तरफ है? सर्वव्यापी है। फिर भी नमस्कार करते हैं। विमल बोध घन होता हुआ भी वह श्री वल्लभम है। श्री माने उपाधि, श्री का अर्थ होता है उपाधि। चैतन्य में जो उपाधि से युक्त है वही श्री वल्लभ है। श्री वल्लभ का अर्थ होता है लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लीला करने के लिए विमल बोध घन होता हुआ भी अपनी अचिंत्य शक्ति श्री का आश्रय लेकर वह सगुण साकार भी होता है और सगुण निराकार भी हो जाता है। निर्गुण निराकार तो उसका स्वरूप है ही है। श्रीवल्लभ का अर्थ होता है सगुण निराकार। वल्लभ शब्द का अर्थ होता है आनंद। श्री वल्लभ का अर्थ होता है उपाधि से आनंद का अनुभव करने वाला, तो सोपाधिक आनंद। इसी को ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी ने एक सूत्र की रचना कर दी है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। परमात्मा का जो अवतार है वो सब लीला के लिए है, आनंद के लिए है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि उपाधि ग्रहण नहीं करेगा तो वह आनंद का अनुभव नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझना। उपाधि ग्रहण नहीं करेगा तो उस समय वह आनंद घन होगा, उस आनंद घन को फैलाने के लिए उपाधियों का आश्रय लेता है, समझे कि नहीं? जैसे आप लोग डिस्प्रिन खाते हो सिर दुखता है तो पानी में वो टैबलेट डालते हो तो डालते ही वो टैबलेट घुल जाता है। इसका मतलब उसमें औषधीय गुण नहीं है, ये तो नहीं कह सकते हो। वो औषधीय गुण पानी से अलग होकर ठोस हुआ तो टैबलेट हुआ, और वो पानी में घुल गया तो घुल गया। चाहे सीधे टैबलेट खाओ चाहे पानी में मिलाकर खाओ, औषधीय गुण में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह परमात्मा निरुपाधिक हो चाहे सोपाधिक हो, परमात्मा की आनंद स्वरूपता में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पर अनुभव का कारण सोपाधिक में होगा, खुद के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोपाधिक का परानुभव होगा, दूसरे भी उसका अनुभव कर सकें, इतनी प्रयोजन है। इसलिए इस बारे में हमने बहुत पहले शिवानंद लहरी में खूब जोर लगाकर व्याख्या की थी। आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने कहते हैं, क्रीडार्थम सृजति प्रपंचमखिलम, क्रीडा मृगास्ते जनाः, यत्कर्मा चरितं मया च भवत प्रत्ययी भवत्येव तत्। हे परमात्मा, आपने सारा प्रपंच की रचना किस लिए की है? क्रीडार्थम, खेलने के लिए प्रपंच की रचना की है। और ये निश्चित है कि बच्चे जब खेलने के लिए किसी वस्तु की रचना करते हैं, वह केवल रचना मात्र होता है, सत्य नहीं होता। बच्चे खेलने के लिए जो घर घरौंधा बनाते हैं, वो घर क्या सत्य घर होता है? है? होता है बोलो। बच्चे जो घर घरौंधा बनाते हैं खेलने के लिए, कहीं समुद्र किनारे चले गए, बालू का रेत का ढेर देख लिया, तो वहीं वो लोग हाथ से घर बनाने शुरू कर देंगे। और ये कहेंगे कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा कमरा, ये मेरा कमरा। तो वो बच्चे लोग घर बना रहे हैं किस प्रयोजन से? रात को सोने के लिए है? बच्चे वहां घर बना रहे हैं किस प्रयोजन से? रात को सोने के लिए, रहने के लिए, इसलिए बना रहे हैं क्रीडार्थ। उनका प्रयोजन केवल इतना ही है। अब यही कारण है कि शाम को घर जाने से पहले उसको सब तोड़ तार के खत्म कर देते हैं। इसी तरह हे परमात्मा, अपने ये प्रपंचों की रचना की है, इसलिए किसी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं है, क्रीडार्थम। इसलिए आपके दृष्टि में ये प्रपंच कोई खास मायना नहीं रखता। केवल आनंद का विलास के लिए मात्र हेतु है। अंदर का जो आनंद है, आपका स्वरूप आनंद, उसको आप इस माध्यम से बाहर फैला रहे हैं, विलास कर रहे हैं। क्रीड़ा मृगास्ते जना, हम लोग जितनी भी हैं आपके खेल के खिलौने हैं। यत्कर्मा चरितम च मया च भवत प्रीति, मेरे द्वारा जो कुछ भी आचरण हो रहा है वह आपकी प्रसन्नता के लिए है, क्योंकि मुझे परिचालन करने वाले भी आप ही हैं। मेरा निर्माण भी आपने किया है और मेरा परिचालन भी आप ही करेंगे। तो मेरे समस्त आचरण आपके प्रीति के लिए हो, आपके दुख के लिए न हो, आपकी प्रसन्नता के लिए हो। शंकराचार्य जी कहते हैं। और जब ये भाव रहता है तो मैं दुखी हूं करके मैं क्यों कहूं, बोलो, मेरा दुखी होना भी आपके प्रसन्नता के लिए है, है? मेरा दुखी होना भी आपकी प्रसन्नता के लिए है, तो मैं दुखी हूं करके आपकी शिकायत क्यों करूं? ये प्राय आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये भाषा आप लोगों के समझ में नहीं आने वाला है। आप लोग यही कहोगे कि दूसरे को दुखी करके वो खुश होना चाहता है, ये भी कोई खुश होने का नियम है? दूसरे को सुखी करके खुश होना, ये खुश होने का नियम है? ये बात तो आपको समझ में आती है? दूसरों को दुखी करके खुश होना, ये भी कहीं बात समझ में आती है, नियम है? लेकिन तमाम प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता करते क्या है, नाटक में, पिक्चर में दुखी होने का सीन रखते हैं कि नहीं, बोलो? प्रोड्यूसर सिनेमा में दुखी होने का सीन रोल रखता है कि नहीं, है? क्यों रखता है वो? दुखी होने का रोल क्यों रखता है वो? है? नहीं रखना चाहिए था ना? अब वो जो कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन जो भी हो, रोती है, तड़पती है, छटपटाती है, बिलखती है, तब दर्शक को आनंद आता है कि नहीं? है? दर्शक को आनंद आएगा कि नहीं? नहीं आएगा तो देखने क्यों जाते हैं पैसा खर्च करके? वो भी जरूरी है। अत्यधिक दुख दिखाकर बाद में फिर कोई हीरो आएगा, फिर उसको मदद करेगा, तो वह सुख का ही एक पार्ट्स के रूप में परिणत हुआ कि नहीं? दुख क्रीडार्थम सृजति। समग्र रूप में सिनेमा के जो लेखने वाला है, वहां दुख का जो पार्ट्स है, डायलॉग है, अभिनय है, वह भी दर्शकों के मनोरंजन का हेतु है कि नहीं? दर्शक के मनोरंजन का हेतु है। रामलीला में सीता रोते हुए, तड़पते हुए दृश्य देखा कि नहीं? तो क्यों रखा? आप उस रामलीला को सीता के रोते हुए देखकर आपके आंख से भी आंसू आए, रोने लगे, तो फिर भी आप देखे जा रहे हो, है? आपको पता है ये रावण ने हरण किया, अब ये सीता रोने के अलावा कुछ नहीं, अब आगे रामायण नहीं देखेंगे करके बंद करोगे टीवी? क्या होगा उसके आगे, ये जिज्ञासा बनी रहेगी। और वो जितने अच्छी तरह रोएगी उतने ही आपको आनंद आएगा। ठीक से रोई, रोने में यदि बनावटी जैसा न हो, रियल जैसा न हो, तो फिर मजा नहीं आवे। तो आप भी रियल जैसे ही रोते हो कि नाटक जैसा रोते हो, बोलो? पिक्चर में एक्टर रियल जैसा रोता है कि नाटक जैसा रोता है? रियल जैसा रोता है ना, इसलिए आपको आनंद आता है। और व्यवहार में आप कैसे रोते हो, रियल जैसा रोते हो कि नाटक जैसा रोते हो? रियल जैसा रोते हो तो मजा क्यों नहीं आ रहा है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है? नाटक में रियल जैसा रो रहा है तो आपको मजा आवे। सिनेमा में रोने वाला एक्टर, हीरोइन, हीरो रियल जैसा रोए तो आपको मजा आवे, और व्यवहार में आप रियल जैसा रोए तो मजा ना आवे, दुख होवे। उस दुख में भी सुख का अनुभव करो, यही ईश्वर की क्रीड़ा है, यही ईश्वर की लीला है। क्रीड़ार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम, क्रीड़ा मृगास्ते जना, यत कर्माचरितम मया च भवत प्रीति भवती वतत। संभो स्वस्य कुतूहलस्य करणम, मैं आपके मनोरंजन का साधन हूं, इतने ही अनुरोध मैं आपसे करना चाहता हूं कि खेलो, खूब खेलो, हमारा परिचालन करो, खूब खेलो, हमें उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन इतने आप रखना कि खिलौना टूट न जाए ताकि आगे आपका खेल बिगड़ जाए। खेलते खेलते खिलौना टूट गया तो आगे खेल रुक जाएगा कि नहीं? शतरंज के खेल में सेना भी होते हैं, राजा भी होता है, हाथी भी होते हैं, मंत्री भी होता है, और लड़ाई होती है, मारकाट होती है, उसने उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, मजा आता है कि नहीं बोलो? दोनों पक्ष जीतते हैं शतरंज में, दोनों पक्ष तो जीतते नहीं, हारना तो निश्चित है, लेकिन वो हारने वाला भी खेल का मजा लेगा कि नहीं? तो संसार सब इसी तरह मिला जुला है। श्री वल्लभम, हाँ, और कैसा है वो जिसको तुम नमस्कार कर रहे हो? निर्मुक्त बंधनम अपार सुखाम्बुरासिम, अपार सुख रूपी जल का, अंबु माने जल, राशि समुद्र है वो, जैसे पानी का अपार, पानी के जो राशि है समुद्र में है, सीप बोट या प्लेन के बिना आप और हम पार नहीं पा पाएंगे समुद्र को, जल राशि को, इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगे। बोट का आश्रय लें या प्लेन का आश्रय लें, उड़ के चले जाएं या बोट में जाएं, अन्यथा अपार है। हनुमान जी ही इसको पार कर सके उड़कर। हनुमान जी यदि उड़कर पार होंगे तो व्हेल मछली चल के पार होगी कि नहीं? समुद्र को बोलो, है व्हेल मछली तो समुद्र में इस पार से उस पार जा सकती है चलते चलते, उसको कोई हर्जा नहीं है जाने में। हनुमान जी उड़ के चले गए, तो कोई हनुमान ही उड़ के इस समुद्र को पार कर सकता है। इसी तरह आप भी भगवान के कृपा पात्र होंगे तभी अब संसार पार जा सकते हैं। तो परमात्मा कैसा है? अपार सुख अंबुरासिम, निर्मुक्त बंधनम, उसको कोई बंधन नहीं है। कर्मानुबंधी, उसका कोई कर्म नहीं है, संचित क्रियमाण नहीं है, तो प्रारब्ध नहीं है, ईश्वर का प्रारब्ध नहीं, परमात्मा का प्रारब्ध नहीं। क्यों नहीं है? क्या कर्म नहीं करता परमात्मा? कर्म करता है, लेकिन वह कर्म कर्तृत्व भाव से नहीं करता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कर्म का रहस्य बता दिया है। हे अर्जुन, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी उपस्थिति में सारा कर्म करने का काम प्रकृति करती है, लेकिन वह मेरी उपस्थिति में करती है। सूयते सचराचरम, ये तो सामान्य नियम है, लेकिन अज्ञानी अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा किए गए सारे कर्मों को अहंकारी व्यक्ति मेरे द्वारा हुआ है ऐसा कहता है। परिणाम यह होता है कि वही अहंकारी व्यक्ति प्रकृति द्वारा किए गए कर्म को अहंकर्ता भाव से करने के चलते वही कर्म से बंधन में पड़ जाता है, निर्मुक्त बंधन नहीं हो सकता। और क्योंकि परमात्मा की दृष्टि है कि प्रकृति मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो उसमें अहंकर्ता भाव न होने के कारण उसके क्रियमाण संचित नहीं है, तो प्रारब्ध भी नहीं है। जीवात्मा का क्रियमाण संचित तथा प्रारब्ध यही कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, संसार में, ये संसार में अर्थात मनुष्य लोक में मनुष्य ही अपने कर्म से खुद बंध जाता है। परमात्मा कर्म करता है लेकिन अपने कर्मों से वो खुद नहीं बनता, उसी को कहा यहां निर्मुक्त बंधः। सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य शक्तिम, वह जो विमल बोध रूप है वह खुद सर्ग स्थिति प्रलय का हेतु है, कारण है। सर्ग माने सृष्टि, स्थिति माने रक्षा, प्रलय माने नाश। जो बना सकता है वो बिगाड़ सकता है, जो निर्माण कर सकता है उसका वह ध्वंस भी कर सकता है। यही तो एक भगवान बुद्ध के सामने अंगुलीमाल जब गया पहुंचा, कातिल अंगुलीमाल हाथ में खड़ग लेकर बुद्ध के सामने पहुंच गया, बुद्ध को मारने के लिए, काटने के लिए। अंगुलीमाल ने अपना परिचय दिया है, तुम कौन हो? बुद्ध ने जब पूछा तो बोले मेरा परिचय, मेरे गले में जो माला है यही मेरा परिचय है। बोले बुद्ध ने देखा माला किसकी थी? तो सब मनुष्यों के अंगुलियों की माला थी, इसलिए उसका नाम ही अंगुलीमाल हुआ। बोले ये तो अंगुलियों के माला है भाई। बोले यही मेरा परिचय है, मैंने जिसको मारा है उसके एक अंगुली काटकर मैंने अपने माला में लगाई है। अब आप गिन लो कितनी को मारा है, मेरा काम ही यही है। और तो यहां किस उद्देश्य आया है? जो हम काम करते हैं उसी काम करने के लिए आए हैं, हम तुमको भी मारेंगे और तुम्हारा भी एक उंगली यहां इस माला में जोड़ेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा, तो क्योंकि तुम्हारे हाथ में हथियार है, तुम मारने वाले हो, अवश्य तुम मारोगे, मैं इसका प्रतिकार नहीं करूंगा, कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में हथियार नहीं है, मैं प्रतिकार भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना ही है, मुझे मारने से पहले एक काम करो, वो जो एक पत्ता है पेड़ में उसको तोड़कर ला सकते हो? उसको तोड़कर लाओ। उसने कहा कि कौन सी बड़ी चीज है भाई, कौन सी बड़ी बात है। पड़ से गया और डाली पकड़ ली और एक पात तोड़कर लाकर दे दिया। ले भगवान बुद्ध ने कहा, कहते हैं एक काम करो, इसको फिर वहीं जोड़ दो, जाओ फिर वहीं जोड़ो, जहां से तुमने तोड़ा था वहीं जोड़ो। उसने कहा यह असंभव है, जोड़ नहीं सकते। तो बुद्ध ने एक ही शब्द प्रयोग किया है कि यदि जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ा क्यों। उसी व्यक्ति तोड़ सकता है जो जोड़ सकता है, उसी को तोड़ने का अधिकार है जो जोड़ सकता है। अब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने के लिए क्यों प्रवृत्त हो गए। बोले ये तो कोई भी नहीं जोड़ सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं जोड़ सकता है, ये बात गलत है। देखते देखते अंगुलीमाल के देखते देखते वो पत्ता उड़ के गया और जहां से टूटा था वहीं जुड़ गया। जोड़ नहीं सकते हो ये बात गलत है, जुड़ सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, उसके लिए क्या है, अचिंत्य शक्तिम, जिसके पास मनुष्यों की बुद्धि ही पहुंच नहीं सकती, अचिंत्य शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकता है, वो तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, अचिंत्य शक्ति है माया का, ये नाम है माया का। उस अचिंत्य शक्ति के चलते वह सृष्टि भी कर सकते हैं, पालन भी कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं, क्योंकि वह विश्वेश्वर है, सारे विश्व के ईश्वर है, अर्थात अनंत क्रिया शक्ति है। विदित विश्वम अर्थात वह सर्वज्ञ है। विश्वेश्वरम ये शब्द से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, और विदित विश्वम इस शब्द से वह सर्वज्ञ है, अनंत मूर्तिम इस शब्द से वह आनंद रूप है। अर्थात विश्वेश्वरम इस सत का प्रतीक है, वह सत स्वरूप है, विदित विश्वम इस शब्द से वह चित्त स्वरूप है और अनंत आनंद अनंत मूर्तिम से वह आनंद स्वरूप है। ऐसे जो परमात्मा है निर्मुंद बंद अनंत सुखाम्बरासिम श्रीवल्लभम विमल बोध घनम अहम नमामि। नमस्कार के बारे में एक और भी स्पष्ट करना जरूरी है कि मैं जिसको नमस्कार करता हूं उसके सारे गुणधर्म मुझ में आ जावे, ये अभिप्राय से नमस्कार करना है। अपने से वह श्रेष्ठ है, उसका श्रेष्ठत्व धर्म मुझ में आ जाए। परमात्मा सगुण को हम इसीलिए नमस्कार करते हैं कि उनके सारे गुण हमारे में आ जाए, है ना? या फिर वेदांत तो सगुण को नमस्कार करके सगुण के माध्यम से निर्गुण भाव की स्थिति चाहता है। ये तो हो गया इष्ट देव नमस्कारात्मक श्लोक। अब ये द्वितीय श्लोक के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी गुरुदेव को नमस्कार करते हैं, क्योंकि नियम भी है इष्टदेव, जो परमात्मा में बुद्धि है वही गुरु, जो गुरु में भक्ति है वही परमात्मा। इष्टदेव पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, त तस्यैति कथितायार्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो उनके द्वारा बताया गया जो वाक्य का अर्थ है उपदेश है, वही हृदय में प्रकाशित होता है। गुरु के बारे में नमस्कार करते हुए ये श्लोक आरंभ करते हैं। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुर् मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् तस्यांग्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः, जिसके कृपा से मैं स्वयं ही विष्णु बन जाता हूं। है या विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक, अपने को अभी तक देह परिच्छिन्न मानता रहा, लेकिन गुरु की कृपा होगी तो मैं व्यापकता का अनुभव कर सकता हूं। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु हूं। तब क्या तुम सृष्टिकर्ता बन जाओगे? तुम विष्णु बनोगे तो फिर सृष्टिकर्ता बन जाओगे? मय्येव सर्वं परिकल्पितं च, तब ये निश्चित है कि उनकी कृपा से मुझे ये बोध होता है कि सारा विश्व मेरे द्वारा ही कल्पित है या मुझे अधिष्ठान में कल्पित है। सारा विश्व मुझे अधिष्ठान में कल्पित है। आप लोगों ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के बारे में सुना हो, आदिगुरु शंकराचार्य जी का पहला श्लोक है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्। ये सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड कैसा है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य है। जैसे मिरर में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी तरह ये जगत केवल आभास के रूप में ही खड़ा है। मिरर के अंदर दृश्य केवल आभास के रूप में खड़ा है, है कि नहीं? मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर दृश्य यथार्थ रूप में खड़ा है कि आभास के रूप में खड़ा है? यथार्थ रूप में तो खड़ा नहीं है, आभास के रूप में खड़ा है। इसी तरह सारा विश्व ब्रह्मांड तुमको जो दिखाई पड़ रहा है, कैसा दिखाई पड़ रहा है? आवास के रूप में दिखाई पड़ रहा है कि यथार्थ रूप में दिखाई पड़ रहा है? तुमको लग तो यथार्थ के रूप में है, हमको लग तो यथार्थ के रूप में है, लेकिन यह आवास के रूप में। इसलिए कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। बोले वहां दर्पण में आवास के रूप में दिखता है, तो यह विश्व फिर आवास के रूप में है तो कहां दिख रहा है? जवाब दिया, निजांतर्गत, तुम्हारे ही अंदर यह सारा विश्व आवास के रूप में देख रहा है। अब यह समझ में आना बड़ा कठिन है, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर आभास के रूप में है, निजांतरगतम। हमको क्या लग रहा है, ये सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर है ऐसा लग रहा है कि मेरे बाहर है? सभी को ये लग रहा है कि हमसे बाहर है, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि वास्तव में ये बाहर है ही नहीं, ये सब तुम्हारे अंदर है। दृष्टांत दिया तुरंत ही, कैसे? पश्यन् आत्मनि मायया बहि इव उद्भूतम्। मायया बहि उद्भूतम् इव पश्यन्, निजांतरगतस्थ अपने ही अंदर जो विद्यमान विश्व ब्रह्मांड है, माया के चलते अपने से बाहर जैसा बोध हो रहा है। है अंदर, अंदर होता हुआ भी माया के चलते अपने से बाहर जैसा हमको प्रतीत हो रहा है, लेकिन बाहर नहीं है, माया के चलते बाहर जैसा हो रहा है। यथा निद्रया, दृष्टांत दिया कैसे? यथा निद्रया, स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला सारा प्रपंच स्वप्न दृष्टा के बाहर है कि स्वप्न दृष्टा के अंदर है? है? स्वप्न में तुम प्रेमपुरी आश्रम को देखोगे, यदि वो स्वप्न का प्रेमपुरी आश्रम तुमसे बाहर का होगा कि तुम्हारे अंदर का होगा? अंदर का होगा, लेकिन स्वप्न देखते समय है तुम्हें ये भान होता है ये प्रेमपुरी आश्रम मेरे ही अंदर है, ऐसा भान होता है? कैसा भान होता है? जैसे अभी भान हो रहा है प्रेमपुरी आश्रम हमसे बाहर है, ऐसा ही भान होता है स्वप्न में भी, प्रेमपुरी आश्रम मेरे से बाहर है, जबकि बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। इसी तरह ये अभी जो प्रेमपुरी आश्रम तुम बाहर देख रहे हो, ये भी तुम्हारे अंदर ही है। ये अभी बाहर कैसे दिख रहा है? तो मायया वहां स्वप्नया, वहां स्वप्न रूपी विकार के चलते अंदर का विश्व बाहर जैसा दिखता है, यहां माया रूपी विकार के चलते अंदर का जगत बाहर दिखता है, लेकिन है अंदर ही है, क्योंकि तुम माया के अधिष्ठान हो। तुम क्या हो? माया के अधिष्ठान हो, और जिस अधिष्ठान में माया रहकर जो दृश्य दिखाएगी, वह दृश्य उसी अधिष्ठान में ही अस्तित्व में रहेगा, उससे बाहर अस्तित्व वाला नहीं हो सकता। जैसे सिनेमा में पर्दे में पंचदशी का चित्रदीप प्रकरण पढ़ो तो यह दृष्टांत दिया है, जैसे पर्दे में लाइट पड़ता है तो तमाम दृश्य दिखाई पड़ते हैं, और वो पर्दे में दिखाई पड़ने वाला जो दृश्य है वहां दो चीज है, एक तो पर्दा है अधिष्ठान, दूसरा है उस पर्दे में पड़ा हुआ रोशनी है, लाइट है। अब ये बताओ, सिनेमा में रात्रिकालीन अंधकार का दृश्य दिखाना होगा तो रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं?
है?
उस समय लाइट गुल कर दिया जाएगा तो दिखेगा अंधकार का दृश्य, उसके लिए बत्ती चाहिए कि नहीं, रोशनी चाहिए कि नहीं? प्रकाश ही अंधकार बन गया कि नहीं वहां पर्दा में, बोलो है? वहां प्रकाश का अभाव अंधकार नहीं है, उस दृश्य में, सिनेमा में जो अंधकार का दृश्य दिखाई दे रहा है वो अंधकार क्या है? प्रकाश का ही रूप है। प्रकाश ही अंधकार का रूप धारण करके तुम्हें अंधकार के रूप में दिख रहा है। लेकिन जबकि यह कहा जा रहा है कि अंधकार और प्रकाश परस्पर विरोध है, जबकि प्रकाश के बिना अंधकार वहां बन ही नहीं सकता, सिनेमा के पर्दे में लाइट का ही खेल है ना, वहां तो सब अंधकार भी रोशनी के द्वारा ही तैयार हुआ। और वो अंधकार जो दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, रोशनी से ही दिख रहा है, बत्ती के अभाव से नहीं दिखेगा वो। इसीलिए सारा विश्व ब्रह्मांड में अधिष्ठान चैतन्य सत्ता में ही ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। अज्ञान का जो बोध हो रहा है वो भी वही ज्ञान से ही हो रहा है, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान ही अज्ञान बनकर हमारे सामने खड़ा है, और वो ज्ञान ही, बोध ही जगत बनकर हमारे सामने खड़ा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन आत्मनि स्वयं में मायया वही उद्भूतम इव पश्यन। इव शब्द दिया है वह, बाहर नहीं है परंतु बाहर जैसा बोध हो रहा है, जैसे स्वप्न का पदार्थ बाहर नहीं है लेकिन स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखते समय अपने से बाहर देखता है, जबकि वह तुमसे, वो स्वप्न दृष्टा से बाहर नहीं है। यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, वही स्वप्न दृष्टा स्वप्न से जब जग जाता है तो स्वप्न में दिखे हुए बाहर जैसे पदार्थों में से कुछ भी नहीं मिलता, वो केवल एक अपने अलावा और किसी को अनुभव नहीं करता। आत्मानम एव अद्वयम साक्षात कुरुते। इसी तरह इस समय जो हमको बाहर जैसा दिख रहा है विश्व प्रपंच, ये तो अज्ञान के चलते, अविद्या के चलते, माया के चलते बाहर जैसा दिखता है। उस अज्ञान अविद्या से जब हम जग जाते हैं, अज्ञान निद्रा, अविद्या निद्रा, माया निद्रा से जब हम अपने स्वरूप में जगते हैं तो अपने अलावा कुछ भी सिद्ध नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा विश्व अपने में ही परिकल्पित है। तो वही बात यहां कहा शंकराचार्य जी ने, यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुर् मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्तं विजानामि सदात्मरूपम्। तो गुरु की कृपा, गुरु के प्रसाद से ही है ये अनुभव हो सकेगा। इत्तं विजानामि, क्या जानोगे? गुरु की कृपा होगी तो क्या बोध होगा? बोले मय्येव सर्वं परिकल्पितं च, अहमेव विष्णु, अहमेव ब्रह्मा, अहमेव रुद्र। लियो जी, जागृत में तुम्ही ही ब्रह्मा हो, स्वप्न में तुम्ही ही विष्णु हो, सुसुप्ति में तुम्ही ही रुद्र हो। जागृत स्वप्न सबका संहार करता तुम्ही ही तो हो, तुम्हारे अलावा कौन है स्वप्न में सुसुप्ति में सब दृश्यों का संहार करने वाला? तुम्हारे अलावा कौन है, है? जागृत और स्वप्न प्रपंच का, स्थूल और सूक्ष्म सारे प्रपंचों का सुसुप्ति में संहार करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है? ये बात अलग है कि ये सब चीज बिना गुरु की कृपा भी प्रकृति के नियमों से तुम करते जा रहे हो, तो गुरु की कृपा होगी तब ये बोध होगा कि ये सब करने वाला तो मैं ही हूं, तब ये बोध होगा। इत्थं विजानामि सदा आत्मरूपम्, अपने आप को इस तरह सत्रूप, विजानामि चिद्रूप, आत्मरूप, अद्वय रूप, तस्यांग्री पद्मम्, ऐसे गुरु के चरण कमलों में जिसकी कृपा से मुझे ऐसा बोध होगा, ऐसे गुरु के चरण कमलों में अंग्री माने चरण, पद्मम माने कमल, तस्य अंग्री पद्मम प्रणतः, मैं नमस्कार, प्रकृष्टेन नतः प्रणतः, पूरी तरह मैं अपने अहंकार का विसर्जन करता हूं। नित्यम, टीकाकार ने बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा है, वो अज्ञस्य दुःखोगममयम् ज्ञस्य आनंदमयम् जगत्। योग वासिष्ठ का ये श्लोक को उदाहरण दिया है, जगत वास्तव में दुखमय नहीं है, आनंदमय ही है, लेकिन संसारी इसको दुखमय मानते हैं। बोले एक ही वस्तु आनंदमय और दुखमय कैसे हो सकता है, परस्पर विरोध है। तो उसका उत्तर दिया है भगवान राम को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं योग वासिष्ठ में, देखो बेटा अज्ञस्य दुःखोगममयम्, अज्ञानियों के लिए ये सारा जगत दुखमय है, ज्ञस्य आनंदमयम् जगत्, ज्ञानियों के लिए सारा जगत आनंदमय है। अरे भाई, जो वस्तु है जैसे अग्नि, अग्नि यदि उष्ण है, ये अग्नि में जलाने की क्षमता है, जानने वाले को भी जलाती है, और ये अग्नि जलाने की क्षमता है करके न जानने वाले को भी अग्नि जलाती है। क्या न जानने वाले को अग्नि नहीं जलाती, जानने वालों को ही जलाती है, जलाना उसका धर्म है, तो चाहे जानने वाला हो चाहे न जानने वाला हो। इसी तरह संसार आनंदमय है तो सबको आनंदमय होना चाहिए, दुखमय है तो सबको दुखमय होना चाहिए। ये आपने कैसे कह दिया महाराज, भगवान राम पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से, ज्ञानियों के लिए आनंदमय है और अज्ञानियों के लिए दुखमय है, ये कैसे हो गया महाराज? तो दृष्टांत दिया, होता है बेटा अंधम भुवनम अंधस्य, जिसके आंख नहीं अंधा है उसको सारा जगत अंधेरा दिखेगा कि नहीं, बोलो। अंधस्य भुवनम अंधम, दिखेगा कि नहीं बोलो। और सुचक्षुषः, जिसके आंख बिल्कुल ठीक ठाक है, सुचक्षुषः, उनके लिए जगत क्या प्रकाशम, यही जगत में दिन के समय में अच्छे नेत्र वालों के लिए चारों तरफ रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, और आंख वाले सुचक्षु को जिस समय प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है उसी समय अंधे को अंधकार ही अंधकार दिखेगा कि नहीं।
और जिस समय अंधे को अंधकार ही अंधकार दिख रहा है उस समय में
सुचक्षु को प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। एक ही वस्तु सुचक्षु के लिए प्रकाशमय और अंधे के लिए अंधकारमय। इसी प्रकार से जगत अज्ञानी के लिए दुखमय, ज्ञानी के लिए आनंदमय।
तो ज्ञानी होकर जगत का पूरा आनंद लेना चाहते हो कि अज्ञानी होकर जगत में रोते रहना चाहते हो?
और जगत में पूरे आनंद लेने आए तो ज्ञानी होना ही पड़ेगा, आंख का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। दिन में प्रकाश का अनुभव करना है तो आंख का ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। वही ऑपरेशन की प्रक्रिया प्रेमपुरी आश्रम में चल रही है। आगे की व्याख्या कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।